नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल के प्रसंग में ये सुना, अश्वत्थामा ने कहा कि आपकी बात तो आप जानो, मैं तो रात को जाकर मारूंगा इनको, पांडवों को। कृपाचार्य जी ने बहुत समझाया पर उसने एक नहीं मानी। वो तो रथ लेकर रवाना ही हो गया, आपकी मर्जी हो तो आप आओ, आपकी मर्जी नहीं हो मत आऊंगा, मैं तो जाऊंगा। संजय कहते हैं कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोत कर शत्रुओं पर रात्रि में चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। तब कृपाचार्य और कृतवर्मा ने आपस में विचार किया कि ये क्यों जा रहा है। कृपाचार्य ने कहा कि वो उनको मारने जा रहा है, तो क्या अपना यहां पीछे रहना उचित है। तो कहा कि उचित तो नहीं है पर ये काम गलत करने जा रहा है, पर अब इसको सेनापति बना दिया है, अपने तीन में यही सेना है, यही सेनापति है, इसलिए इसका साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। और अश्वत्थामा ने साफ कह दिया कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को उस स्थिति में मारा था जब उनके पास शस्त्र नहीं था, आज भी मैं उस पापी पांचाल पुत्र को उसी पाप का फल देने के लिए कवचहीन और शस्त्रहीन अवस्था में मारूंगा, ये तो प्रतिज्ञा कर चुका है। तो फिर अपने को भी चलना चाहिए, अपना सेनापति ऐसा करता है तो चलो। ऐसा कहकर अश्वत्थामा जब रवाना हुआ, पीछे पीछे ये भी रवाना हो गए और ये तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए। रात्रि के अंदर पांडवों के शिविर में पहुंच गए, सुनसान एकदम सन्नाटा छाया हुआ। पांडवों का जो शिविर था उसके दरवाजे पर जाकर अश्वत्थामा खड़ा हो गया। वहां उसने एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर देखा। उस महापुरुष को देखकर रोमांच हो गया, व्याघ्र चरम पहन रखा है, मृग चरम ओढ़े रखा है, सर्पों का यज्ञोपवीत पहना हुआ है, विशाल भुजाएं हैं, यहां भी सर्प है, भुजबंदों में भी सर्प है, और यूं देखता ऐसे सांस निकालता है तो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, नाक से, मुख से, कान से, हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं, उसके तेजोमय किरणों से शंख चक्र गदा पद्मधारी सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो रहे हैं। ऐसे पुरुष को देखा दरवाजे पर, शिविर के दरवाजे पर। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उसके ऊपर अनेक दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया, जो भी शस्त्र आए मुंह में रख लिया। अश्वत्थामा ने एक अग्नि के समान देदीप्यमान रथ की शक्ति छोड़ी, वो भी निगल ली। निगल क्या ली, वो टूट करके उससे टकरा करके नष्ट हो गई। चमचमाती हुई तलवार चलाई, वो तलवार उसके अंदर लीन हो गई। फिर उसने गदा छोड़ी, वो भी लीन हो गई। अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए। इधर उधर दृष्टि डाली, घबरा गया। इस समय देखा कि सारा आकाश विष्णु ही विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा ये अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचनों को याद करके मनी मन में कहने लगा कि ओहो, इस संसार में जो पुरुष हित की बात कहते हैं चाहे वो हमें अप्रिय लगे, परंतु यदि हम उसे सुनते नहीं हैं तो वो घोर आपत्ति में पड़ता है, जैसे मैं पड़ गया हूं। मुझे कितना समझाया कृपाचार्य ने कि ऐसा मत करो। क्या करूं, मूर्खता से कर लिया मैंने। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करता है, मनमर्जी युद्ध में प्रवृत्त होता है, धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, कुमार्ग में जाने से उसको उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। मनुष्य को चाहिए गाय पर, ब्राह्मण पर, राजा पर, स्त्री पर, मित्र पर, माता पर, गुरु पर, दुर्बल पर, मूर्ख पर, अंधे पर, सोए हुए पर, डरे हुए पर, नींद से उठे हुए पर, मतवाले पर, उन्मत्त और असावधान पुरुष पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही ये शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं तो शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते चल गया, इसी से इस घोर विपत्ति में पड़ गया हूं। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण बीच में छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग उसे मूर्ख कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया। यूं तो मैं द्रोण का पुत्र हूं, किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं हूं, पर ये तो महाप्राणी मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी बुद्धि अधर्म में डूब गई है, उसका दमन करने के लिए भयंकर परिणाम मेरे सामने आया है। निस्संदेह इस समय मुझे जो युद्ध में हटना पड़ रहा है यह दैव का विधान है। सचमुच दैव की अनुकूलता के बिना प्रारंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं होता, दैव माने भाग्य। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूं, जो जटाजूटधारी देवताओं के वंदनीय, उमापति, सर्व पापापहारी और त्रिशूल धारण करते हैं, वे ही इस भयानक देवी विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवादिदेव श्री महादेव के शरणागत होकर वो स्तुति करने लगा। हे महादेव, आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, सर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकंठ हैं, अजन्मा हैं, शुक्र हैं, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्व संहारक हैं, विश्वरूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, स्मशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खटवांग धारण करने वाले हैं, आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं, आप त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूं। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप स्तुत्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप भक्तों के भी संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चर्म से सुशोभित रक्तवर्ण वाले नीलग्रीव आप असह्य है, शत्रुओं के लिए दुर्जय है। इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना आप ही करते हैं, साक्षात परब्रह्म है, तपोनिष्ठ है, तपस्वियों के आश्रय है, गणाधिपति है, स्वामी कार्तिकेय के पिता है, पीतवर्ण है, वृषवाहन है, दिगंबर है, आपका वेश बड़ा उग्र है, आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर है, ब्रह्मादि से श्रेष्ठ है, परात्पर है, सब देशों के रक्षक हैं, स्वर्णमय कवच धारण करने वाले हैं, मैं अत्यंत सम्मोहित होकर आपकी शरण लेता हूं। यदि आज मैं दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूपी शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक सोने की वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, उससे बहुत से गण प्रकट हुए। उन गणों के मुख और नेत्र देदीप्यमान थे, अनेकों सिर थे, पैर और उनके बहुत हाथ थे, उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे और हाथों को ऊपर किए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल काय थे, उनमें जरायुज अंडज स्वेद चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान रक्षा करते थे। वे सब भूत बड़े भयंकर थे, देखने में बड़ा डर लगता था, त्रिलोकी उनको देखकर डरती थी, तथापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को बलि के रूप में समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ और अपने शरीर को हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाही। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की स्तुति करने लगा। हे विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्तिभाव से मैं समाहित होकर अपने आप को ही इस अग्नि में भेंट करता हूं, आप स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं, आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं तथा आप ही में मुख्य मुख्य गणों की एकता होती है। हे विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप हविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ऐसा कहकर उस अग्नि से देदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मुंह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्व भाव होकर निश्चेष्ट देखकर भगवान शंकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की थी, इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु वे अब कालवश निस्तेज हो गए हैं, अब उनका जीवन शेष नहीं रहा है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। भगवान शंकर ने जब भगवान शंकर अश्वत्थामा के अंदर आविष्ट हो गए, अश्वत्थामा का तेज और बढ़ गया और तलवार हाथ में ले ली। संजय कहते हैं, अब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए, उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने बहुत धीरे धीरे कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाए तो सभी क्षत्रियों का भी संहार हो सकता है। फिर निद्रा में पड़े हुए हैं इन बचे खुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा, काल के समान मार काट मचा दूंगा, उनमें से कोई जग करके हल्ला करके बाहर आए तो बाहर आती आप उनको मारना चालू कर दीजिएगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ना है। ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के उस विशाल शिविर में चले गए। वे दरवाजे से नहीं गए, वो किसी बीच के रास्ते से घुस गए। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहां पहुंच गया अश्वत्थामा। वहां उसने देखा सब योद्धा युद्ध में थके जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास एक रेशमी शैया पर उसे धृष्टद्युम्न सोता हुआ दिखाई दिया। धृष्टद्युम्न को खूब अच्छी तरह से देखा और अपने हाथ में तलवार थी। द्रोणाचार्य के वध का पाप याद करके अश्वत्थामा का क्रोध चौगुना हो गया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न जाग उठा और महारथी अश्वत्थामा को अकस्मात रात्रि में देखकर वह पलंग से उठने लगा कि उसी समय अश्वत्थामा ने उसके बाल पकड़ लिए और झटके से उसको पृथ्वी पर पटक दिया। अभी तक धृष्टद्युम्न संभला भी नहीं था, एक तरफ भय एक तरफ निद्रा दोनों से दबा हुआ था और अश्वत्थामा ने जोर से पटक भी लगा दी तो वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसे जमीन पर पटक कर उसकी छाती और गले पर अपने घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुत जोर जोर से चिल्लाया भी छटपटाया भी, परंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा। अंत में उसने भी अश्वत्थामा को नखों से बकोटते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, आचार्य पुत्र क्यों देरी करते हो, इस तलवार से मेरा सिर काट दो। उसने इतना कहा ही था अश्वत्थामा ने जोर से उसको दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुल कलंक, मेरे पिता और अपने आचार्य की हत्या करने वाले को यदि मैं शस्त्र से मारूंगा तो उसको पुण्य लोक मिलेगा, इसलिए मैं तुझे शस्त्र से नहीं मार सकता। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की खूब लात मारी, घुटनों से उसके छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से सारी घर की स्त्रियां जग गईं। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देख उसे भूत समझ लिया, इसलिए भय के कारण कोई उनसे बोल नहीं सका और सब चुपचाप देखते रहे। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को इसी प्रकार पशु तरह पीटा, इतना पीटा, पीटते 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 जब तक उसका सांस नहीं निकला तब तक उसको पीटता रहा और अंत में जब उसका श्वास निकल गया तब धृष्टद्युम्न तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज धृष्टद्युम्न को मरा देखकर उसकी रानियों और रखवाले लोगों ने बड़ा शोक किया, विलाप करने लगे। उनके कोलाहल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। स्त्रियों ने बड़ी दीन वाणी से कहा कि अरे जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो, हमारे तो समझ में नहीं आया, कोई राक्षस आ गया, कोई दैत्य आ गया, कोई मनुष्य आ गया, देखो इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर बेखटके आराम से घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु अश्वत्थामा ने एक डांट पिलाई, कोई भी मेरे पास नजदीक आ गया मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने कहा, कौन हो तुम? तू इतने में रुद्रास्त्र चलाया और सबको मार दिया। उसके बाद वो दूसरे शिविर में गया, वहां उत्तमौजा को पलंग पर सोते हुए देखा, उसके भी कंठ और छाती को उसने पैर से दबा दिया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, अश्वत्थामन, द्रोण के पुत्र होकर तुम सोते हुए योद्धाओं पर हमला करते हो? अश्वत्थामा कुछ नहीं बोला और उसको भी पीट पीट करके मार डाला। युधामन्यु था योद्धा, उसने देखा उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मार लिया, इसलिए वो गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु के छूटने के लिए बहुत तेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह मार ही डाला। इस प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया, वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामा के मन में कोई दया नहीं थी। उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतारता चला गया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम श्रेणी के सैनिकों को भी देखा, जो बेचारे निद्रा में बेहोश थे, उन सबको उसने तलवार से सोते हुए को काटना चालू कर दिया। सारा तंबू तहस नहस हो गया। केवल मनुष्य ही नहीं, घोड़े भी थे, हाथी थे, हाथियों को, घोड़ों को सबसे उस तलवार से काटना चालू किया। उसके खुद के शरीर पर खूब खून ही खून हो गया। वह साक्षात काल के समान था। उस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी, वे अश्वत्थामा का शब्द सुनकर भौचक्के रह जाते और उसे राक्षस समझ करके आंख मूंद लेते। इस प्रकार भयंकर रूप धारण की सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अब वह द्रौपदी के पुत्रों के शिविर में गया। देव द्रौपदी के पुत्रों ने जब सुना कि हमारे मामा धृष्टद्युम्न मारे गए हैं, तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य तलवार लेकर ऐसा युद्ध किया, सबसे पहले प्रतिविंदी जो युधिष्ठिर का पुत्र था उसके पेट में कौक के अंदर तलवार अंदर डाल दी और फाड़ दी, प्राणहीन होकर गिर गया। दूसरा पुत्र था सुतसोम, उसके प्रास से चोट की और वह भी तलवार लेकर द्रोणाचार्य के पुत्र की ओर चला। अश्वत्थामा ने तलवार सहित उसकी वो भुजा काटी और फिर पसली पर प्रहार किया, हृदय फट गया, मर गया। तीसरा नकुल का पुत्र शतानीक, एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वत्थामा की छाती पर मारा। अश्वत्थामा थोड़ी देर के लिए व्याकुल हुए, फिर वापस संभल गए और अश्वत्थामा ने फिर उस तलवार से उसका सिर काट दिया। द्रौपदी का चौथा पुत्र श्रुतकर्मा परिघ लेकर के अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके बाएं गाल पर चोट की, किंतु अश्वत्थामा ने तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि उसका चेहरा बिगड़ गया, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। उसका शब्द सुनकर के श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के सामने आया, पर अश्वत्थामा ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी के पुत्रों को मारने के बाद वो शिखिंडी के शिविर में गया और वहां प्रभद्रक नाम के वीर थे, उनको मारना चालू किया। उसने एक बाण से शिखिंडी की भ्रकुटियों के बीच में चोट की, फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके दो टुकड़े किए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े वेग से प्रबंधकों पर टूट गया। राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी उसे उसने एकदम कुचल डाला और राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र संबंधियों को खोज खोज करके मौत के घाट उतारा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग गए। उसने उनमें से किसी के पैर, किसी की जांघें, किसी की पसलियां काट दी, उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया, जिससे वे भयानक चीत्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से अनेकों योद्धा उनके नीचे पिस गए। उन सब की लोथों से सारी रणभूमि पट गई। घायल वीर, ये क्या हुआ, ये कौन है, ये किसका शब्द है, ये क्या कर डाला, ऐसे ऐसे शब्द सुनाई दे रहे थे। उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान था। पांडव और सृजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर भी लिए थे, उन सबको अश्वत्थामा ने यमलोक पहुंचा दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत हो रहे थे, वे उसके शब्द को चौंक कर उछल पड़े, किंतु भयभीत होकर जहां तहां छिप गए। डर के मारे उनकी घीघी बन गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए। अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार हुआ, हाथ में धनुष लिया हुआ, बाण लिया हुआ और तलवार लिया हुआ, जो भी मिलता उसको यमराज के हवाले करता गया। फिर वे हाथ में ढाल तलवार लेकर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर योद्धा लोग चौंक पड़ते, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत होकर बिचारे जिसको जो दिशा समझ में आए उधर ही भगते, बुरी तरह चिल्लाते, ऊटपटांग बातें करते, उनके बाल बिखरे हुए, एक दूसरे को पहचाने नहीं, वे उधर उधर भागने में गिर गिर करके पड़ जाते थे, उनको चक्कर आता था, हाथी और घोड़े रस्से तुड़ाकर सब और गड़बड़ी करते हुए दौड़ते थे, कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिपे रहते, किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से खून देते तो उससे मर जाते। इस प्रकार बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। लोगों के इधर उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई, जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाई को नहीं पहचानता था। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर टूट पड़े तथा एक दूसरे की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत हो गए। वे अंधेरे में उठकर आपस में आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे और दैववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। हा तात, हा पुत्र, इस प्रकार चिल्लाते हुए भाई बंधुओं को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बड़ा भारी कोहराम मच गया। अनेक वीर यंत्र और कवचों के बिना भी शिविर के बाहर जाना चाहते थे। जिनके बाल खुले हुए थे, वे हाथ जोड़े भय से थर 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 कांप रहे थे। वे जो ही शिविर के बाहर निकले, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीन और आग लगा दी, जिससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उस प्रकाश की सहायता से अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार लेकर सब और घूम घूम करके योद्धाओं का संहार किया। किन्हीं किन्हीं के सिर काटे, किन्हीं को तिल के पौधे के समान बीच में अलग किया, किसी को शस्त्र सहित भुजदंडों को, किसी को मुकुट सहित सिरों को, किसी ने किसी की जंघाओं को, किसी के पैरों को, किसी की पीठ को, किसी की पसलियों को तलवार से उसने काटना चालू किया। इस प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया, किसी को कर्णहीन कर डाला, किसी के कंधे पर चोट करके शरीर उसका सिर शरीर के अंदर डाल दिया। इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता हुआ शिविर में घूमने लगा। बड़ी भयावनी रात थी, हजारों आदमी मर गए, अधमरे मनुष्य भी मरने मरने पर स्थिति पर थे, हाहाकार कर रहे थे, ओहो आज पांडव हमारे पास नहीं है तभी हमारी दुर्गति है, अर्जुन को तो असुर गंधर्व यक्ष राक्षस मिलकर के भी नहीं मार सकते, क्योंकि साक्षात कृष्ण उनके सहायक हैं। वो अर्जुन यदि आज हमारे साथ होते आज हमारी ये दशा नहीं होती। ऐसे कोलाहल होता रहा। दो घड़ी के बाद सारा कोलाहल शांत हुआ, सारी पृथ्वी खून से तरबतर हो गई। इसलिए एक क्षण में भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, एकदम घबराए हुए थे, जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था उनको भी मार दिया। जो एक दूसरे से लिपटकर रक्षा चाहते थे, शिविर छोड़कर भागे थे, छिपे हुए थे, उनको भी उसने जीवित नहीं छोड़ा। जो लोग आग में झुलस जाते और जो आपस में ही मारकाट करते, उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि आग में जल रहा है, ये तो यूं ही मर जाएगा, तो भी उसको मारा। रात भर ये कार्य होता रहा। सुबह पो फटने पर अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया। उस समय नर रक्त से, मने लोगों के खून से सनकर तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई मानो ये तलवार इस हाथ का ही अंग है। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ वहां फिर रहा था। मन में सोच रहा था कि धृष्टद्युम्न को मारकर आज मैंने पितृ भक्ति का काम किया है। वह छावनी से बाहर आया, कृपाचार्य और कृतवर्मा से मिला, खूब प्रसन्न था। उन्होंने उसको आनंदित किया यह कहकर कि देखो अश्वत्थामन, हमने भी हजारों पांचालों श्रृंजियों को मारा है, इससे वो बड़ा प्रसन्न हो गया। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय अश्वत्थामा तो मेरे पुत्रों की विजय के लिए कमर कसे हुए थे, ऐसा पराक्रम उसने पहले क्यों नहीं दिखाया? मेरे सारे पुत्र मर गए, उसके बाद ये पराक्रम हमारे क्या काम आया? ऐसा काम इसको पहले ही कर देना चाहिए था, ताकि ये युद्ध होता ही नहीं। संजय ने कहा, महाराज यदि आप अपने पुत्र का पक्ष लेते ही नहीं तो युद्ध होता ही नहीं। कोई काम हो जाता है उसके बाद कि ये हो, ऐसा करते तो होता ही नहीं, ये तो होने वाला था। महाराज आपको पता नहीं है, अश्वत्थामा भीतर से कृष्ण से, पांडवों से और सात्यकी से डरता रहता था, इसलिए वो युद्ध में बातें करता था, कभी सामने नहीं आया। इस समय उनके पास नहीं रहने से उसने कर्म किया है। यदि कृष्ण रहते, अर्जुन रहते, अश्वत्थामा की घीघी बन जाती। इसके बाद अश्वत्थामा ने आचार्य कृप और कृतवर्मा को गले लगाया, उनका अभिनंदन किया और बड़े गर्व के साथ कहने लगा, मामा जी, ये कृपाचारी मामा थे, मामा जी, कृतवर्मा जी, मैंने समस्त पांचालों को, द्रौपदी के पांच पुत्रों को, संग्राम से बचे हुए सभी मत्स्य और सोमक वीरों को नष्ट किया है, और मेरे पिता द्रोण के हत्यारे धृष्टद्युम्न को सबसे पहले मारकर मैंने श्री गणेश किया है। अब हमारा काम पूरा हो गया, इसलिए जहां राजा दुर्योधन है वहां चलना चाहिए। यदि वे जीवित हों तो उन्हें यह तुरंत समाचार सुना देना चाहिए। संजय ने कहा, राजन वे तीनों वीर संपूर्ण पांचाल वीरों, द्रौपदी के पुत्रों को मारकर जहां दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में पड़ा था उस स्थान पर आए। उन्होंने जाकर देखा तो उस समय उसमें कुछ ही प्राण बाकी थे। वह जैसे तैसे अपने प्राण बचाया हुआ था, उसके मुंह से रक्त निकल रहा था तथा उसे चारों ओर से अनेक भेड़िए और दूसरे हिंसक जीव घेरे हुए थे। वे सब उसे चट करना चाहते थे। वह बड़ी कठिनाई से उन जानवरों को रोक रहा था। उस समय उसके शरीर में रोम रोम से वेदना हो रही थी। दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर तीनों वीरों को असह्य कष्ट हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पूछा और फिर दीन होकर भी विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय दुर्योधन, विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज 11 अक्षौणी सेना का सेनापति स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खून से लथपथ हुआ पृथ्वी पर धूली धूसरित होकर पड़ा है। महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी, उसी प्रकार ये सोने के पत्थर से मणी हुई गदा वीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है। काल की कुटिलता को तो देखो, जो शत्रुसूदन सम्राट किसी समय मूर्धावी शिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, सब राजा इसके कदम के पीछे चलते थे, आज वही भूमि पर पड़ा हुआ धूल फाक रहा है, जिसके आगे हजारों सैकड़ों हजारों राजा लोग भय से सिर झुकाते थे, वह आज वीर शैया पर पड़ा हुआ है। पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ति के लिए घेर लेते थे, आज उसको मांस के लोभी मांसाहारी भेड़िए और दूसरे जीव जंतु घेरे रखे हैं। अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, आपको समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप साक्षात भगवान शंकरषण के शिष्य और युद्ध में कुबेर के समान थे, तो भी भीमसेन को किस प्रकार आप पर प्रहार करने का अवसर मिल गया? आप सब धर्मों को जानने वाले क्षुद्र और पापी दुर्योधन भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया? ये तो काल की गति है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था, किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांग तोड़ डाली। इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिर ने उस क्षुद्र भीमसेन से कुछ नहीं कहा। ये तो साक्षात धर्म के रक्षक माने जाते हैं। एक कहता है, मैं धर्म का अवतार हूं, यही धर्म है। भीम ने आपको कपट से गिराया और कृष्ण और युधिष्ठिर कुछ बोले ही नहीं, धिक्कार उनको। इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तब तक योद्धा लोग भीम की निंदा करेंगे। महर्षियों ने क्षत्रिय के लिए उत्तम गति बताई है, युद्ध में मारे जाने के कारण वो आपने प्राप्त कर ली है। राजन, आपके लिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो आपके पिता और माता गांधारी के लिए चिंता है, जिनके सभी पुत्र काल के गाल में चले गए। हाय, अब वे भिखारी बनकर दर दर भटकते रहेंगे, हर समय उन्हें पुत्रों का शोक सताता रहेगा। वृष्णिवंशी कृष्ण और दुष्ट बुद्धि अर्जुन को धिक्कार, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मज्ञता का अभिमान रखकर भी भीमसेन को मारते समय कोई रोक टोक नहीं की। वे निर्लज्ज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे ऐसे दुर्योधन को मारा था, बता नहीं सकते। और इतने बड़े वीर के सिर पर जिस हिंसक स्वरूप में भीमसेन ने पैर रखा, वो तो पाप की बहुत बड़ी पराकाष्ठा थी। गांधारी नंदन, आप धन्य हैं, आप वीरगति को प्राप्त हो गए। महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं अश्वत्थामा धिक्कार के पात्र हैं, जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि एक दिन आपके सुकृतों का स्मरण करते करते हम यूं ही मर जाएंगे। स्वर्ग या अर्थ, इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा। न जाने हमारा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है। अब तो निस्संदेह हम बड़े दुख में इस पृथ्वी पर अपने दिन काटेंगे। आपके न रहने पर हमें सुख शांति कैसे मिल सकती है? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं, वहां महारथियों से आपकी भेंट होगी। उन सब की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार हमारी ओर से पूजा करना, और पहले आप समस्त धनुर्धरों की ध्वजा रूप आचार्य द्रोण का पूजन करना और उन्हें सूचना देना कि हे आचार्य, आपके पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार दिया है। फिर महाराज वाल्मीक, महारथी जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा और भी जो वीर पहले स्वर्ग जा चुके हैं उनको मेरी ओर से आलिंगन कहना और उनसे कुशलता की बात कहना। राजन, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आप सुन रहे हैं ना? क्या आप में प्राण शक्ति है ना? थोड़ा सा इशारा किया तो एक बात और सुन लीजिए। मृत्यु का कष्ट आपको मैं भुलवाने के लिए बोल रहा हूं, इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। अब पांडवों के पक्ष में केवल 5 भाई कृष्ण और सात्यकी 7 वीर बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए। और अपने पक्ष में मैं, कृतवर्मा और आचार्य कृप, ये 3 बचे हैं। कितना बड़ा अपने अंतराल था, हजारों की संख्या में अंतराल था, वो सब नष्ट हो गया, 7 और 3 बचे। द्रौपदी के सब पुत्र मारे गए, धृष्टद्युम्न और उसके बच्चे मारे गए, समस्त पांचाल युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया है उस पर ध्यान दीजिए। अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं। आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़ा थे इन सबको मैंने नष्ट कर दिया है। आज पापी धृष्टद्युम्न को मैंने पशु की तरह पीट पीट करके मारा है। दुर्योधन को अश्वत्थामा की बात बहुत प्यारी लगी। वह कहने लगा, भाई आज कृपाचार्य और कृतवर्मा तथा तुमने जो काम किया है वह काम तो अपने समय में भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिता द्रोण भी नहीं कर सके। तुमने शिखंडी को मार दिया, तुमने धृष्टद्युम्न को मार दिया, आज निश्चय मैं अपने आप को इंद्र के समान विजयी समझता हूं। तुम्हारा भला हो अश्वत्थामन, अब स्वर्ग में ही तुम्हारी और हमारी भेंट होगी। इस प्रकार कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों को दुख में छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्यधाम स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। उसका शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा था। राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई। वह रणांगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं के द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उसका आलिंगन किया। अश्वत्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं संजय शोकाकुल होकर दिन निकलते ही यहां हस्तिनापुर चलाया। इस प्रकार ही महाराज धृतराष्ट्र, आप ही की खोटी सलाह से ये कौरव और पांडवों का भीषण तम संहार हुआ। इसमें कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है, कौन कायदे से युद्ध किया, कौन कायदे से युद्ध नहीं किया, ये विचार करने का मेरा विषय नहीं है। आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त होकर यहां आया हूं। अब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई जो मेरी दिव्य दृष्टि थी, अब वो दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है। अब आप मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए, लंबी लंबी गरम गरम श्वास लेने लगे, कुछ उनको सूझता नहीं था। वैशंपायन जी ने आगे कहा कि वह रात बीती, धृष्टद्युम्न के सारथी ने राजा युधिष्ठिर के शिविर में जाकर सबको सूचना दी, कहा महाराज राजा द्रुपद के पुत्रों के सहित सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे, वे सभी मार डाले गए। आज रात्रि में क्रूर कृतवर्मा, आचार्य कृप और पापी अश्वत्थामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर दिया। उन्होंने प्रास शक्ति और फरसों से हजारों योद्धाओं को, हाथियों को, घोड़ों को काट काट करके आपकी पूरी सेना का संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यग्र चित्त था, इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार अपने को छिपाता बचाता निकल करके आपके पास आया हूं। सारथी की अमंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गए। सात्यकी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे वो चिल्लाने लगे और फिर थोड़ा सा चेत हुआ तो कह लगे, हाय हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे किंतु आज उन्होंने हमको जीत लिया। हमने भाई, समवयस्क, पिता, पुत्र, मित्र, बंधु, मंत्री, पौत्रों की हत्या करके जो विजय प्राप्त की थी किंतु इस प्रकार जीत कर भी आज हम हार गए। कभी कभी अनर्थ अर्थ सा जान पड़ता है तथा अर्थ सी दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार हमारी ये विजय पराजय में बदल गई और हमारे शत्रुओं की पराजय आज विजय में बदल गई। इस मनुष्य लोक में प्रमाद से बढ़कर मनुष्य की कोई मृत्यु नहीं है। प्रमादी मनुष्य को अर्थ सब प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ सब ओर से घेर लेते हैं। वह विद्या, तप, वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यापारियों का बेड़ा समुद्र को पार करके किसी छोटी सी नदी में डूब जाए, उसी प्रकार आज हमारे प्रमाद से ये इंद्र के तुल्य राजाओं के पुत्र पौत्र सहज ही मारे गए। शत्रुओं ने तो अमर स्वस्य उन्हें सोते में मार डाला है, वे तो निस्संदेह स्वर्ग गए, परंतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है, क्योंकि जिस समय वे अपने भाइयों, पुत्रों और बूढ़े पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्युओं का समाचार सुनेगी, उस समय उसके शोक जनित दुख को कैसे रोक पाऊंगा, उसके हृदय में जो आग लगी हुई है कैसे शांत करूंगा। इस प्रकार दीनता से विलाप करते करते नकुल से कहने लगे, नकुल तुम जाओ और मंदभागिनी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष की स्त्रियों सहित यहां लिवा लाओ। धर्मराज की आज्ञा सुनकर नकुल रथ पर सवार हो उस डेरे की ओर गया जहां पांचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी ठहरी हुई थी। नकुल को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुरिदों के सहित रोते रोते उस स्थान पर गए जहां उनके पुत्र मरे पड़े थे। उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लथपथ सुरिद सखाओं को पृथ्वी पर पड़े देखा, उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए देखे, बहुतों के सिर भी काटे हुए देखे। महाराज युधिष्ठिर बहुत खिन्न थे, फूट फूट कर रोने लगे। अपने पुत्र, पौत्र, मित्रों को संग्राम में मरे देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा आने लगी। तब उनके सुहृदगण अत्यंत उदास होकर धीरज बंधाने लगे। इस समय शोकाकुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचे। वह उपप्लव्य नामक स्थान में गई हुई थी, जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना, वह तो बहुत दुखी हो गई, उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ गया। राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी को गिरते देख महापराक्रमी पृथ्वी पर गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपक कर द्रौपदी को उठा लिया और उन्हें से ढाढ़स बंधाया। तब वह रो रो कर राजा युधिष्ठिर से कहने लगी, राजन अपने वीर पुत्रों को क्षत्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपप्लव्य नगर में मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे, परंतु पापी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते भी मार डाला। यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है। यदि आप आज ही साथियों सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं करेंगे तो वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा। और याद रखिए, मैं यही आजीवन अनशन व्रत प्रारंभ करूंगी, जीवन पर्यंत खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं। ऐसा कहकर यशस्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप बैठ गई। तब महाराज ने अपनी प्रिया के पास ही बैठकर कहा, धर्मज्ञ तुम्हारे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो मैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। रही अश्वत्थामा को मारने की बात, वह यहां से बहुत दुर्गम वन में चला गया है, उसे ढूंढना भी मुश्किल है, मारना तो और भी मुश्किल है। तुम्हें ये सब बातें, उसे मार भी डाला जाए तो तुम्हें ये बात कैसे मालूम होगी कि उसको मार दिया है कि नहीं मारा है। द्रौपदी ने कहा, राजन मैंने सुना है अश्वत्थामा के सिर पर जन्म के साथ ही एक मणि है, सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मणि को ले आइए, उस मणि के धारण करने पर वह जीवित है और मणि से रहित होने पर हम उसको मरा हुआ मान लेंगे। उस मणि को आपके सिर पर धारण करके मैं अनशन तोड़ूंगी, आपके सिर पर धारण रहेगी वो मणि, मैं अनशन छोड़ दूंगी। धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास कहा, भीमसेन आप क्षत्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें, इंद्र ने जैसे शंबरासुर को मारा था उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें, यहां आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है। वारणावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट पड़ा तब आप ही ने इन्हें संभाला था, घोर वन में हिडंबासुर से पाला पड़ा आप इनके रक्षक बने, विराट नगर में जब कीचक ने मुझे तंग किया तब भी आप ही ने उस दुख से मेरा उद्धार किया। आपने जिस प्रकार ये बड़े बड़े काम किए उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को मार करके भी आप प्रसन्न होंगे। द्रौपदी का इस तरह का विलाप और भीषण दुख देखकर भीमसेन सह नहीं सके, वे अश्वत्थामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए और नकुल को अपना सारथी बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की और शीघ्र ही घोड़ों को हाँकने का आदेश दिया। छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़े तेजी से उसका पीछा किया। देखो अभी तक भगवान कृष्ण सामने नहीं आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय भीमसेन के चले जाने के बाद यदुश्रेष्ठ भगवान ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा, राजन आपके भाई भीमसेन बिना सलाह लिए अकेले पुत्र शोक में डूबे हुए रवाना हो गए। अश्वत्थामा को संग्राम में मारने का काम करने के लिए रवाना हो गए, बड़ा आश्चर्य। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं, फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते हैं? आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है, वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया था। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील क्रोधी व्यक्ति है, उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी, केवल मुझे ही सिखाओ। पर आचार्य द्रोण जानते थे कि अश्वत्थामा बड़ा चपल है और उन्होंने उसे आदेश दिया था कि भैया बहुत बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मनुष्यों पर इसे बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं देखता हूं तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर ढंग से चलने वाले नहीं हो। ये उसके पिता ने कह दिया था। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुखों की आशा छोड़कर बड़े शौक से पृथ्वी पर विचर करने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, वो द्वारिका में आया, मुझसे भी मिला, वृष्णि वंशियों के साथ रहा, उन्होंने सब प्रकार से उसका आदर किया। मेरे पास एकांत में आकर बोलता है, कृष्ण मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है। हे यदुश्रेष्ठ, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। आपके पास ये जो दिव्य अस्त्र है, सुदर्शन चक्र है, ये आप मुझे दे दो, कितना अच्छा होगा। मैंने कहा, देखो अश्वत्थामा जी, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र, गदा, जिन जिन शस्त्रों को मैं काम में लेता हूं, ये शस्त्र यही है। मैं तुम्हें क्या दूं? तुमको जो अस्त्र अच्छे लगे वो तुम उठा लो, और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको वो अस्त्र तुम ले लो, और जो मुझे अस्त्र देना चाहते हो वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। उस समय उसने मुझे कुछ तिरछी नजरों से देखा, मेरे साथ कुछ उसकी स्पर्धा हो गई। उसने देखा कि वासुदेव के पास में सुदर्शन चक्र है, तो ये मेरे पास रहेगा तो मैं वासुदेव की बराबर हो जाऊंगा। इसलिए मेरे अनेक शस्त्रों में से अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को पसंद किया और कहा कि क्या मैं चक्र ले सकता हूं? मैंने कहा ले लो। उसने उछलकर बड़े उत्साह से, बहुत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र को एक मामूली सी वस्तु समझकर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वो तो उस स्थान से टस से मस नहीं हुआ। फिर वो दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, फिर दोनों हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, वो उसे उठा ही नहीं। वो उदास हो गया, निराश हो गया, बड़ा खिन्न हो गया। मैंने कहा, मेरे किसी भी अस्त्र को ले जा सकते हो। मैंने पास बुलाकर कहा, जिसकी ध्वजा में बानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद युद्ध में देवादिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में कोई पुरुष मुझे प्रिय नहीं है, किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी अर्जुन ने भी नहीं कही कि ये सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। मैंने 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके ये अस्त्र प्राप्त किया है। मामूली है। साक्षात सनत कुमार जी ही प्रद्युम्न रूप से मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो अश्वत्थामन, वो कभी मेरे पुत्र ने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी जो मेरे स्वरूप है, उन्होंने भी कभी सुदर्शन चक्र को नहीं मांगा। तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो, सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं, फिर इस चक्र को लेकर क्या करोगे? किसके साथ युद्ध करोगे? कौन तुम्हारा शत्रु है? तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का शस्त्र से क्या काम? अश्वत्थामा कहने लगा, हे कृष्ण, मैं आपका पूजन करके और आप ही के सुदर्शन चक्र से मैं आप ही के साथ युद्ध करना चाहता था। भगवान, मैं सच कहता हूं, मैंने कोई बात छिपाई नहीं है। मैंने यही सोचा कि जब ये सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाएगा, देवताओं और दानवों में मैं सबसे ज्यादा पूजनीय बनूंगा और अजय बन जाऊंगा, किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहां से चला जा रहा हूं। दूसरी प्रार्थना सुन लीजिए। क्या? आप इतना कह दीजिए, अश्वत्थामन तेरा कल्याण हो, इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है, इसके समान संसार में दूसरा कोई चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आप ही के पास है, किसी में नहीं है। हे महाराज, आप मुझे कल्याण होने का आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझसे रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। वह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है, इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक रथ पर चढ़े। उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था। उसके दाहिने धुरे में शैव्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था। वो तो पहले ही जल करके भस्म हो गए, दूसरा रथ है। तथा उसके अगल बगल में मेघ पुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे। उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ और रत्न और धातुओं से विभूषित ध्वजा का डंडा था। उसके ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान थे। उस अद्भुत रथ पर श्री कृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर श्री कृष्ण का अर्जुन बैठ गए और युधिष्ठिर को कह दिया, युधिष्ठिर आप भी इस रथ में बैठो। तब भीमसेन की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर ये सब सवार होकर घोड़े के चाबुक लगाकर वे उस रथ को हाँकते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।